तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम।
ज्वालासी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम।
ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महा
पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंख नाद हो।
ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महा प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम।
ओम शांति। अंधेरी रात में भटकते भटकते एक व्यक्ति जंगल में गुजरते हुए एक खाई से नीचे गिरा। मरता क्या न करता, उसने एक डाली को देखा और उस डाली को पकड़ लिया और थाम लिया। वो नास्तिक था, पर अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो पतली सी डाली को पकड़ा हुआ वो चिल्लाने लगा, मदद मदद, बचाओ बचाओ। अंधेरी रात, सर्द, दूर दूर तक वीरानी, कोई नहीं। और फिर उसने भगवान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मेरी मदद कर। यदि तूने मुझे बचा दिया तो मैं तुझ पर विश्वास करने लगूंगा, मैं तेरा भक्त बन जाऊंगा। उसने फिर पुकारा, हे प्रभु, यदि तू संसार में है तो मैं तेरा तुझ पर विश्वास करूंगा, तेरे लिए सब कुछ करूंगा, पर पहले तुझे मुझे बचाना पड़ेगा। आवाज आई, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करोगे। उसने कहा, नहीं भगवान, ऐसा मत करो, ये मेरा वादा है, यदि तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त बन जाऊंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। भगवान ने कहा, मुझे नहीं लगता। उसने कहा, नहीं, मुझे एक अवसर तो दो, मेरी रक्षा करो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, ठीक है, डाली को छोड़ दो। उसने कहा, पागल हो गए क्या? क्या पागल हो जो डाली को छोड़ दो? विश्वास, निश्चय, श्रद्धा, फेथ, बिलीव, ट्रस्ट, अंग्रेजी में तीन शब्द है। इन तीनों में क्या अंतर है ये ढूंढना, बिलीफ, ट्रस्ट और फेथ। हिंदी में विश्वास, निश्चय, श्रद्धा, इन तीनों में क्या अंतर है वो ढूंढना। और छह के छह का एक दूसरे से संबंध नहीं है, सब अलग अलग है। आज की मुरली, तुम हो खुदाई, खिदमतगार, खुदा और खिदमत। संसार में भी लोग खुदा के नाम पर क्या कुछ कर लेते हैं, कार्य पूरे करते हैं, जो कार्य नहीं हो रहा है वो हो जाता है, जो सफलता नहीं मिल रही वो सफलता मिल जाती है, और जो असंभव है वो संभव हो जाता है, और जो नामुमकिन उम्मीद है वो उम्मीद में परिवर्तित हो जाता है। भगवान के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं, और तुम भगवान के नाम पर नहीं, भगवान तुम्हारा साथी है, तो तुम्हें क्या क्या कर देना चाहिए फिर भी नहीं कर पाते, उसका क्या कारण? कारण है, पहला, साथी नहीं समझते खुद को। कारण दूसरा, अपमान और अभिमान आ जाता है। कारण तीसरा, खुदा से तुम जुदा हो जाते हो। कंबाइंड, फिर जुदा क्यों होते हो? संसार में लोग खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, सूफी फकीर जाता है, उसके बाल थोड़े बड़े हुए हैं, वो सोचता है आज थोड़े बाल काट दूं। वहाँ पे एक नाई होता है, नाई की दुकान में जाता है और नाई से कहता है, खुदा के नाम पर थोड़ी बाल काट दो या दाढ़ी बना दो। वो कहता है, क्यों नहीं? वो नाई बाल काटता है, दाढ़ी बना के देता है, और फिर वो सूफी फकीर पैसे निकाल कर उसको देने लगता है। वो नाई कहता है, मुझे नरक में डालोगे क्या? क्या कहा था खुद ही भूल गए? खुदा के नाम पर, मैंने खुदा के नाम पर करके दिया है ये, और तुम पैसे दे रहे हो, मतलब तुम्हें खुद भी विश्वास कम है। उसके नाम पर ही संसार में कितने कार्य हो जाते हैं। उसका नाम जिस पत्थर पर लिखा, वो पत्थर तैरने लगा। वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश को उनका साथी गुरु भाई शांडिल्य चुनौती देता है कि ये तीन मटके रखे हुए हैं, एक ही बांध से तीनों को तोड़ दो, इधर उधर घूम रहे हैं, रस्सी से लटके इधर जा रहे इधर जा रहे। कुश घबरा जाता है, लव क्या करता है, उस तीर पर राम का नाम लिखता है और वो तीर छोड़ता है। वो तीन ही मटके नहीं, आश्रम के जितने मटके थे सारे टूट जाते हैं। तो राम के नाम पर क्या कुछ कर देते हैं लोग। तो जिस भी वस्तु पर राम का नाम लिखा होगा, फिर वो मोबाइल ही क्यों ना हो या घड़ी क्यों ना हो, उस पर क्या लिख देना, शिव। उस परमात्मा का नाम जिस पर लिखा जाता है वो फिर साधारण नहीं रहता है, वो अलौकिक बन जाता है। तो हर वस्तु पर, हर स्थान पर, हर जगह पर उसका नाम लिख दो, फिर देखो क्या होता है, स्थूल में या तो सूक्ष्म में। तो एक तो जुदा हो जाते, दूसरा साथी है ये भूल जाते हैं, और क्या आ जाता है, अभिमान और मान। चैलेंजिंग सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस में ये मंत्र काम करेगा। मैं खुदाई खिदमतगार हूं, खुद खिदमतगार हूं, खुदा मेरे द्वारा करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो सेवा के क्षेत्र में बहुत चैलेंजेस आएंगे और आज हम ऐसे 21 प्रश्न ले रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जो जो संसार के लोग कठिन से कठिन सवाल पूछते हैं, ऐसे सवालों का जवाब अभी हमारे सामने दो पत्रकार हैं, एक इंग्लिश, एक विदेश से आए हैं और एक भारत के हैं। तो वो ऐसे 21 प्रश्न पूछेंगे और समय कम है तो 20 मिनट में, वैसे तो एक एक प्रश्न का उत्तर एक एक घंटा दिया जा सकता है। तो आप सब हमारी तरफ है और ये पत्रकार एक तरफ, हम कुछ उत्तर देने की कोशिश करेंगे पर उसमें आप भी हमारा साथ देना। तो सबसे पहले एक एक प्रश्न लेंगे, रम्या बहन पहले इंग्लिश में वो प्रश्न पूछेंगी और फिर सुशील भाई वही प्रश्न को हिंदी में पूछेंगे और फिर हम उसका उत्तर देंगे। तो इस मुरली में बाबा ने कहा है खिदमत, सेवा, और सेवा करते समय ये सारे चैलेंजेस आते हैं। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं और जो प्रश्न निकाले गए हैं वो बहुत कठिन वाले प्रश्न। एक बहन को, विदेश की बहन को कल रात में हमने ये प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा वेरी ब्रेव, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल है, परंतु हमें उन सभी प्रश्नों का सामना करना है जीवन में। जब हमारी आलोचना होती है, निंदा होती है उस व्यक्ति के लिए, हम क्या करते हैं, उससे हम बात नहीं करते, उससे हम दूर हो जाते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, हम उसे अज्ञानी करार करते हैं, ये मूर्ख है और अज्ञानी है। तो प्रश्नों की ओर चलते हैं, फटाफट फटाफट प्रश्न लेंगे क्योंकि समय की सीमा है, उसके बाद में एक्टिविटी भी है ना, है। तो प्रश्न पहला।
हेलो, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस डिस्कशन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू द इंस्टीट्यूशन इज अबाउट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। योर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ लैकिंग ट्रांसपेरेंसी इन इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। How do you ensure its accountability?
आपके संगठन पर आरोप है कि वित्तीय लेन देन और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, आप इसे कैसे सही ठहराते हैं?
Financial transparency in Brahma Kumaris। तो सबसे पहले तो Brahma Kumaris registered है, charitable trust है, और जो भी audit है वो सारा audit गवर्नमेंट को दिया जाता है, दिखाया जाता है, इससे ज़्यादा और क्या पारदर्शिता हो सकती है। जो भी कार्य यहाँ होते हैं, जो भी डोनेशंस आते हैं और उनका जो डोनेशंस का मैनेजमेंट है, एक बहुत बड़ी टीम है जो उस पर कार्य कर रही है, सारी बहनें जो है वो मुख्यालय में आती है, उनका ऑडिट होता है, एक एक चीज़ का ऑडिट होता है और वो एक एक चीज़ का ऑडिट गवर्नमेंट को दिखाया जाता है, तो ये आरोप बेबुनियाद है। क्योंकि जब सब कुछ इतना स्पष्ट है और जो भी डोनेशंस आते हैं, डोनेशन बॉक्स भी जो आते हैं, दो लोगों के सामने वो खोला जाता है, जो भी चेक आते हैं और जो भी डोनेशन दे रहे हैं उनको संपूर्ण अधिकार है ये पूछने का कि आपने डोनेशंस का क्या किया। छिपा हुआ कुछ भी नहीं है और जो भी डोनेशंस आ रहे हैं वो व्यक्ति अपनी इच्छा से दे रहा है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। तो इतना ही कहेंगे कि और एक चीज़ की हर संस्था की अपनी एक प्राइवेसी होती है फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में, पर ये सारी बातें देखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ बहुत अधिक स्पष्टता है और जिसको भी इसके बारे में और जानकारी चाहिए वो यहाँ आकर ये सारी बातें अपनी आंखों से देख सकता है। नेक्स्ट,
माय सेकंड क्वेश्चन इज, ब्रह्मा कुमारीज क्लेम दे टीचिंग्स रिप्रेजेंट द अल्टीमेट ट्रूथ, इजंट दिस एक्सक्लूसिविटी डिसमिसिव ऑफ अदर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस?
ब्रह्मा कुमारियों का कहना है कि उनकी शिक्षाएं ही अंतिम सत्य हैं, क्या ये अन्य धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं को अनदेखा नहीं करता?
हम भले मानते हैं कि हमारी जो शिक्षाएं हैं या जो परमात्मा ने हमें शिक्षाएं दी है वो अंतिम सत्य है, परंतु जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्मावलंबी हैं उन सब का हम सम्मान करते हैं। हमारी जो बहुत सारी विंग्स बनी हुई है उसमें एक विंग रिलीजियस विंग है और उसमें हर वर्ष एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें विश्व भर के जितने भी धर्म के प्रमुख हैं या धर्मावलंबी है, अन्य अन्य धर्म को मानने वाले हैं, महामंडलेश्वर है, प्रीस्ट है, जो भी हेड्स है, वो सब यहाँ आते हैं और हम सब का लक्ष्य ये है मानव कल्याण, विश्व कल्याण। और हर धर्म की, हर संस्था की अपनी कुछ मान्यताएं होती है, उसी तरह इस संस्था की भी कुछ मान्यताएं हैं, परंतु हमारा दूसरी जो संस्था है उनकी जो मान्यता है उनसे हमारा कोई संघर्ष नहीं है, ना ही हमें कोई आपत्ति है। और हम ये भी देखते हैं कि उन सब का भी लक्ष्य विश्व कल्याण ही है, तो हम सब उनके साथ मिलकर इस विश्व कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो आपका कहना है कि हम उनको अनदेखा करते हैं, हम अनदेखा नहीं करते, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं और उनके तरफ से हमारे लिए जो फीडबैक आता है उस फीडबैक को भी हम गंभीरता से लेते हैं और अपने अंदर, हमारे अंदर यदि कोई कमी है तो उस कमी को भरने का हम सब मिलकर प्रयास करते हैं। और हम एक विश्व परिवार है, हम ये नहीं समझते कि वो हमसे अलग है, जुदा है, वो भी इसी परिवार के है, वन वर्ल्ड वन गॉड फैमिली।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एपोकैलिप्टिक प्रेडिक्शंस। देयर हैव बीन क्लेम्स दैट ब्रह्मा कुमारीज प्रेडिक्टेड द एंड ऑफ द वर्ल्ड सेवरल टाइम्स, येट दीज प्रेडिक्शंस डिडंट कम ट्रू। How do you address this?
ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी ने कई बार प्रलय की भविष्यवाणी की जो सच नहीं हुई, इस पर आप क्या कहेंगे?
प्रलय की जो भविष्यवाणियां हैं, अगर आप देखो YouTube चैनल खोलो तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो प्रलय के विषय में आज बात कर रही है, विनाश के विषय में बात कर रही है। दूसरा, ऐसी साइंस के बहुत सारे चैनल्स है जो एपोकलिप्स के बारे में बात करता है, और जो ब्रह्मा कुमारीज में शुरुआत से प्रलय की बात की है वो वास्तव में विश्व परिवर्तन की बात है। उसको वो जो समय सीमा है वो हमेशा प्रतीकात्मक रही है, ना कि वास्तविक। और जो भी डेट्स आई है, चाहे 1954, फिर 1957, फिर 1976, फिर 1979, फिर 2000, फिर 2012, ब्रह्मा कुमारीज की सारी शिक्षाएं का जो मूल आधार केंद्र है वो है मुरलिया, और किसी भी मुरली में इस यज्ञ के जो संस्थापक है स्वयं परमात्मा, उसने ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि इस तारीख को संसार का विनाश होगा। ये जो अफवाह जो फैली है, ये जो फेल्ड प्रिडिक्शंस की बात जो क्रिटिसिज्म में आती है, आलोचना में आती है, वो संपूर्ण निराधार है, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रिडिक्शन की डेट, विनाश की डेट किसी भी मुरली में नहीं आई है, ना ही संस्था की तरफ से कभी भी ऐसी कोई एक तारीख जारी की गई है कि इस तारीख को संसार का विनाश होगा। ये लोगों ने अपने ही मन से या अफवाहों के आधार पर ये सब बातें फैलाई है।
नेक्स्ट इज क्रिटिक सेज ब्रह्मा कुमारीज एक्सर्ट अनड्यू कंट्रोल ओवर मेंबर्स डिक्टेटिंग देयर डाइट रिलेशनशिप्स एंड थॉट्स, इज दिस ट्रू?
आरोप है कि ब्रह्मा कुमारियां सदस्यों पर उनके खान पान, रिश्तों और विचारों तक नियंत्रण रखती हैं, क्या ये सच है?
ब्रह्मा कुमारीज में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, यहाँ जिसकी मर्जी है वो आ सकता है और जब उसे जाना चाहे वो जा सकता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है। वो जो जीवन शैली अपनाता है, यदि ब्रह्मचर्य अपनाता है या फिर वो यहाँ के खान पान के विषय में या रिश्तों के विषय में या अपने विचारों में जो भी परिवर्तन लाता है वो अपनी इच्छा से लाता है, हो सकता है कि उसे यहाँ की कुछ बातें पसंद आई, कुछ धारणाएँ जो उसने अपनाई, उसने दूसरों में देखी और वो उसे अच्छी लगी, उस आधार पर वो अपनाता है। बाकी संस्था चाहती है कि हर एक आत्मनिर्भर बने, संस्था ये नहीं चाहती कि वो संस्था पर भी निर्भर हो जाए, संस्था चाहती है कि हर एक आत्मनिर्भर बने, परमात्मा निर्भर बने, स्वतंत्र हो, उसकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा हो और वो अपने जीवन में नकारात्मकता से दूर जाए और उन्नति को प्राप्त हो।
My next question is about family relations. Your emphasis on detachment and celibacy is said to cause marital and familial issues for members. How do you respond to this?
आपकी शिक्षा में विरक्ति और ब्रह्मचर्य पर जोर देने से पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आपका इस पर क्या मंतव्य है?
अगर हम इस समय संसार को देखें और संसार में जो भी बातें चल रही है उसको देखे, संसार में जो रिश्ते हैं उनको देखे, या फिर जो परिवार है क्या है इस समय उसमें दरारें पड़ गई है, इस समय उसमें मनोमालिन्य, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ 36 का आंकड़ा है, बात नहीं करते, रिश्तों में ठहराव है, रिश्तों में कटुता है। हम यहाँ पर इस संस्था का लक्ष्य है कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना करें जहाँ पर रिश्तों में मिठास हो, परिवार में प्रेम हो। हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि रिश्तों में दरारें पड़े, हर परिवार में आध्यात्मिक जागृति हो, यह इस संस्था का लक्ष्य है। और ऐसी कोई भी शिक्षा इस संस्था में नहीं दी जाती जिससे इस तरह की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी हो, अलगाव का भाव हो। हम यही चाहते हैं कि हर परिवार सुखी परिवार बने, और यदि आप देखेंगे तो ब्रह्मा कुमारीज में केवल 10% ऐसे होंगे जो कि पूर्ण तरह समर्पित है, अनमैरिड है, बाकी जो 90% है वो कौन है? वो गृहस्थी है, वो संसार में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, और वहाँ रहते हुए अध्यात्म को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को इतना उन्नत उन्होंने बनाया है। ऐसे कई लोगों के अनुभव आप सुन सकते हैं कि उनके जीवन में पहले जो दुख था, संघर्ष था, चिंता थी, अब वो कितनी आसानी से और सहजता से जीवन को सुखी बनाए हुए
हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मा कुमारीज प्रेजेंट गॉड एज शिव बाबा एंड क्लेम एक्सक्लूसिव एक्सेस टू दिस नॉलेज, How do you justify this interpretation of divinity?
ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करती हैं और उसे इसे अनूठा ज्ञान बताती हैं। आप इस दृष्टिकोण को कैसे सही ठहराएंगे?
सत्य जो है उसे ठहराने की आवश्यकता नहीं, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आप उन लोगों से पूछ सकते हो जिन्होंने इसका अनुभव किया है। आप ऐसे कई लोगों से पूछ सकते हो कि जो इस संसार में असंख्य दूसरी संस्थाओं में गए, बहुत भक्ति की, संन्यास लिया, सब कुछ किया, और अंत में जब यहाँ पहुँचे तो उनको क्या अनुभूति हुई। एक तो ये, और दूसरा यदि हम कितने भी शास्त्र पढ़े, सभी शास्त्रों में एक ही चीज़ लिखी है कि वो परमात्मा कैसा है। तो यहाँ पर भी जो बातें बताई जा रही है कि जो हम कह रहे हैं वो शिव जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, एकम सत्व प्रबहुदा वदंती का जो गायन है शास्त्रों में कि सत्य एक ही है, द्वितीय नास्ति, दूसरा हो ही नहीं सकता। परमात्मा दो नहीं हो सकते, ईश्वर दो नहीं हो सकते। चाहे किसी भी संस्था में चले जाओ और गहराई से अगर उस संस्था को, उस धर्म को हम यदि उसका अध्ययन करें तो भले नाम अलग अलग होंगे परंतु अंतिम सत्य एक ही है। और यहाँ पर भी वही सत्य सुनाया जाता है कि वो ईश्वर है, वो ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। यदि वो कोई व्यक्ति होता तो फिर उसमें संघर्ष हो सकता है, क्योंकि यदि हम कहें कि ये देवता ईश्वर है तो मेरा जन्म उस घर में हुआ है जो उस धर्म को मानता है, परंतु दूसरा व्यक्ति क्यों मानेगा फिर। इसलिए ईश्वर की जो अवधारणा है जो यहाँ बताई गई है और जो स्वयं ईश्वर ने बताई है वो यही है कि वो निराकार है।
The next question is, although this institution is led by women, some argue that Brahma Kumaris reinforce traditional gender roles, particularly around celibacy. What's your response?
हालांकि संगठन का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को बढ़ावा देती हैं। इस पर आपका क्या कहना है?
ब्रह्मा कुमारियां महिलाओं को सशक्त बनाने का एक शक्तिशाली संगठन है, एक संस्था है। परंतु यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये महिलाओं की संस्था है, यहाँ पर पुरुषों को भी सम्मान दिया जाता है। और शिव शक्ति, वंदे मातरम, देवियों का पूजन तो हम सदियों से करते ही आ रहे हैं। शास्त्रों में गायन है कि नारिया देवह, नारिया स्वयं, नारिया स्त्रैव प्राण, नारिया ही प्राण है। तो ये जो जेंडर डिफरेंस की बात है ऐसा यहाँ नहीं है। और यदि आप मुख्यालय में आओ ब्रह्मा कुमारी इसके माउंट अबू में, तो यहाँ पर बहनों से ज़्यादा भाई ही है, ब्रदर्स ही है। तो ये भी आरोप मिथ्या है कि हम या तो स्त्री या तो पुरुष को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर सबके लिए समान स्थान है। और यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पांडव और शक्तिया, और भगवान स्वयं कहते हैं कि पांडव शक्तियों के बिना कार्य नहीं कर सकते और शक्तिया पांडवों के बिना कार्य नहीं कर सकते। तो ये संस्था दोनों के मिलाप से आगे बढ़ती जा रही है।
Next question is on financial dependence. It's alleged that Brahma Kumaris rely heavily on donations from members, some of whom might be financially vulnerable. Is this ethical?
वित्तीय निर्भरता को लेकर प्रश्न है। कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारियां आर्थिक रूप से दान पर निर्भर हैं और कई बार कमजोर तब स्थिति वाले लोगों से दान लिया जाता है, क्या ये सही है?
यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी इच्छा से दान करता है, यहाँ पर किसी पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती नहीं है। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, ऐसे में तो ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसा भी देखा गया है कि वो ऐसे लोगों की मदद भी करती है। तो ये आरोप भी पूर्णतः मिथ्या है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति अपनी मर्जी से दान देता है। और यहाँ जो भी देता है वो इसलिए देता है क्योंकि उसको विश्वास हो जाता है, वो अपने धन को सफल करना चाहता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि यह संस्था कौन सा कार्य कर रही है। ये कोई व्यक्ति की संस्था नहीं है, ये ईश्वरीय संस्था है, ये किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं है, ये स्वयं परमात्मा के द्वारा स्थापित है। और ये जो कार्य चल रहा है ईश्वरीय कार्य चल रहा है, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी जैसे वो गिलहरी ने श्री राम के सेतु बनाने में मदद की थी, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी थोड़ा बहुत योगदान दूं। तो ऐसी कोई भी जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दूं और वो दूसरों को भी अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे बुद्ध के भी जीवन में दिखाया है, बुद्ध का एक शिष्य था, उसने अपनी इतनी सारी उसके पास, वो इतना अमीर था, परंतु उसकी इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा विहार था, एक बहुत बड़ी जगह थी, वो मैं बुद्ध को दान में दूँ। क्यों? क्योंकि बुद्ध के इतने लाखों जो शिष्य है, वर्षा काल में 4 मास वो लोग एक स्थान पर रुकते हैं, तो कहाँ रुकेंगे? तो वो राजा के पास गया, प्रसेनजीत के पास। प्रसेनजीत ने कहा ये भूमि मैं नहीं दूंगा, पर उस व्यक्ति ने कहा कि आपको कितना पैसा चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा कि जितनी भूमि है उतने सोने के सिक्के तुम डाल दो तो ही मैं तुमको वो भूमि दूंगा। उस व्यक्ति ने, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद कल बताऊंगा, पर उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ गिरवी, सब कुछ दे दिया और पूरे सिक्कों से भर दिया उस भूमि को। तो ऐसे उदाहरण शास्त्रों में भी। नेक्स्ट,
यू से इट्स अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन।
यस।
नेक्स्ट इज, फॉर्मर मेंबर्स हैव स्पोकन अबाउट इमोशनल डिस्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रह्माकुमारीज टीचिंग्स एंड लाइफस्टाइल। Are you aware of these concerns?
मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रश्न ये है कि कुछ पूर्व सदस्यों ने कहा कि आपकी शिक्षा और जीवन शैली से उन्हें मानसिक तनाव और चिंता हुई, क्या आप इन समस्याओं से अवगत हैं?
ऐसे बहुत से लोग हैं जो संस्था से जुड़े या इसी नहीं और भी किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े और उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में वो आए, परंतु ये इतनी बड़ी संस्था है कि जैसे कोई स्कूल होता है, उस स्कूल में आप जाओगे तो कुछ स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो फेल स्टूडेंट है, वैसे भी यहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष आए जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में, उन्होंने अपने मनोबल से या आध्यात्मिक शिक्षाओं से उनको क्रॉस किया, पार किया। और ऐसे जो लोग हैं उनके लिए परामर्श की भी व्यवस्था है, ऐसे स्पिरिचुअल काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स यहाँ एस्टैब्लिश हुए हैं, ऐसी बहनें हैं जो मोटिवेशनल इस तरह के काउंसलिंग की कोर्सेज कराते हैं। तो यहाँ के जो भाई बहनें हैं जिनको पुरुषार्थ करते हुए समस्या आती है, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, एंग्जाइटी फियर का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए भी जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे उनके जीवन में जो समस्याएँ आती है उनके लिए भी परामर्श केंद्र यहाँ बने हुए हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहने हैं, हमारी दादियाँ हैं जो समय समय पर इसका निवारण करती रहती है।
The next question is about the cult allegations. Some describe Brahmakumaris as a cult due to its strict rules, groupthink, and charismatic leadership. How do you distinguish yourself from such allegations?
कुछ लोग ब्रह्माकुमारियों को एक संप्रदाय कहते हैं जहाँ कड़े नियम और समूह सोच का दबाव होता है, आप इसे कैसे खारिज करेंगे?
ब्रह्मा कुमारीज कोई सांप्रदाय नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, कोई सेक्ट नहीं है, और ना ही ये फैनेटिज्म या सेक्टेरियन या कट्टरवाद को प्रोत्साहन देती है। यहाँ हर व्यक्ति, जैसे पहले भी कहा, स्वतंत्र है, और यहाँ का लक्ष्य है आत्म जागृति, आध्यात्मिक जागृता। यहाँ का लक्ष्य है स्वपरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना। और यहाँ पर हर व्यक्ति, ये केवल संस्था भी नहीं है, इसे हम एक परिवार कहते हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति एक परिवार का सदस्य है। ये विशाल परिवार है, प्रभु परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम कहें कि ये एक सेक्ट है। यहाँ तो सबसे आगे वो है जो धारणा में आगे है, ये वो धर्म है, ये कोई हिंदू मुस्लिम इस टाइप का धर्म नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी धारणा है मानवता, यहाँ सबसे बड़ी धारणा है पवित्रता, यहाँ सबसे बड़ी धारणा है ऑनेस्टी। तो इन धारणाओं के मूलभूत सिद्धांतों पर ये संस्था चल रही है, तो यहाँ सांप्रदायिकता बिल्कुल भी नहीं है।
So the next question is, there are claims that Brahmakumaris have altered or sanitized their history to fit a particular narrative. Can you please clarify?
ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्माकुमारियों ने अपने इतिहास को ही बदल दिया या उसे अपने अनुसार गढ़ा जा रहा है, क्या ये सच है?
इतिहास पूरी तरह से स्पष्ट है और लिखा भी गया है, परंतु व्याख्याएं उसकी अलग अलग हो सकती है। आपको अगर रियल इतिहास स्टडी करना है तो आदि रतन, जो दादिया है इस संस्था की, जो शुरुआत से थी, उनके अनुभवों का ऑडियोज, कैसेट्स, वीडियोज सब कुछ अवेलेबल है इस संस्था में। यहाँ पर इसी संगठन में लगभग 2 साल पहले हमने एक 108 दिनों की रिट्रीट चलाई थी। यज्ञ का इतिहास, एक कौन सी क्रांति थी वो? अभिनव क्रांति। यदि आप संस्था का इतिहास एक एक दिन का जानना चाहते हैं कि संस्था कहां से चालू हुई, वो पूरा 108 दिनों में कंप्लीट ब्रह्मा कुमारीज का हिस्ट्री डेट सहित एक एक दिन का उसमें यहां पर बताया गया है। उस सीरीज का नाम था एक अभिनव क्रांति, ब्रह्मा कुमारीज एक अभिनव क्रांति। उसमें संपूर्ण इतिहास है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उसमें छिपाई गई है, और उसमें जो बातें लिखी गई वो सारी बातें हमें खुद याद है। जब हमने उसका अध्ययन किया था तो कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो विदेश के वेबसाइट्स हैं, उनको हमने खोला और वो कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसे थे कि जो बिल्कुल खुलते नहीं थे, उसको सब्सक्राइब करना पड़ा, और फिर उसमें जाके कुछ सारे बहुत सारे 1936 में क्या हुआ, 37 में क्या हुआ, 38 में क्या हुआ, 40s में क्या हुआ, 50s में क्या हुआ, ब्रह्मा कुमारी ये नाम कब पढ़ा गया, ये परमात्मा का अवतरण है ये कब बताया गया, प्यू की स्टोरी क्या है, ऐसी बहुत सी बातें हैं उसमें जो डिटेल में एक एक बात, 50s में क्या हुआ, 60s में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ, 80s में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, और 2022 तक क्या हुआ, वो पूर्ण इतिहास उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया। तो आप वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचिंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज सच एज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5000 ईयर साइकिल lack empirical evidence, why should people accept them?
5000 साल के चक्कर जैसे आपके सिद्धांतों के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लोग इसे क्यों स्वीकार करेंगे?
हमारी जो शिक्षा है वो अनुभव, अनुभवात्मक शिक्षा है। इसका लक्ष्य है कि हम व्यक्ति का परिवर्तन करें। हाँ, परंतु यदि कोई विद्वत्तापूर्व कोई संवाद करना चाहता है या कोई डिबेट करना चाहता है तो उसके लिए स्वागत है। एक दूसरा, बहुत सारी बातें ऐसी होती है इस संसार में भी है कि जिनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये रेवलेशन है, प्रकट हुआ है, जिसके द्वारा प्रकट हुआ वो जो दादा लेखराज और जिनको बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया, उन्हें भी इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये ज्ञान रेवलेशन है, एक ऊपर से प्रकट हुआ है। इसलिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, जैसे हमने कहा एक एक प्रश्न का उत्तर एक एक घंटा दिया जा सकता है, पर समय की सीमा है, इसलिए कहेंगे इतना ही कि अगर ऐसे बहुत सारे आपके प्रश्न हैं तो हम आपके साथ अलग से बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, और आपकी तरफ से कुछ आउटपुट है, फीडबैक है, तो वो भी हम स्वीकार करेंगे।
Definitely, thanks for that initiative. We'll definitely try to arrange some other meeting. The next question is, the requirement for lifelong celibacy, even for married members, is seen as impractical and disruptive. How do you justify this?
जीवन भर ब्रह्मचर्य का नियम यहाँ तक कि विवाहित लोगों के लिए भी अव्यवहारिक और कठिन माना जाता है। आप इसे कैसे सही ठहराते हैं?
ब्रह्मचर्य यहाँ पर हर एक का व्यक्तिगत चुनाव है, और ये देखा गया है कि जब जब जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाता है तो संबंधों में, सामाजिक समाज में, व्यक्तिगत तौर से सब तरीके से उन्नति ही उन्नति होती है। हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। संबंधों में जो डिस्टर्बेंस है फिजिकल रिलेशंस में, वो अपने आप ठीक होने लगते हैं, प्लेटोनिक रिलेशनशिप। तो यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो व्यक्ति इसे अपनाना चाहता है अपना सकता है, जैसे पहले भी कहा कई बार, और ये व्यक्तिगत यात्रा है हर एक।
ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर फिलॉसफी ऑफ डिटैचमेंट इज ऑफन इंटरप्रिटेड एज नेग्लेक्टिंग वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ डू यू एड्रेस दिस कंसर्न?
आपका विरक्ति का सिद्धांत अक्सर दुनिया के प्रति जिम्मेवारियों की अनदेखी के रूप में देखा जाता है, आप इसका जवाब कैसे देंगे?
आप भी दो कुछ आंसर। तो विरक्ति अर्थात डिटैचमेंट, डिटैचमेंट अर्थात ये नहीं कि सबसे दूर चले जाना, डिटैचमेंट अर्थात रिस्पॉन्सिबल होना। कई बार साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट की तो बात आजकल साइंस भी करता है, जब हम किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो उसके अवगुण दिखने लगते। इसके लिए साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट, फिजिकल डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट अपने आप को सेपरेट करना नहीं है, परंतु अपने आप को संपूर्ण बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम दूसरे व्यक्ति को अपने आप से मुक्त कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति को समय चाहिए, स्थान चाहिए टू ब्रीद। हम यदि किसी व्यक्ति को पकड़ के रखे, अटैचमेंट में जिए, तो उसमें केवल दुख और केवल अपेक्षाएं, और इससे जीवन में बहुत हलचल होती है। इसलिए यहाँ जो डिटैचमेंट सिखाई गई है, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, ये अलग होने के लिए नहीं, परंतु एक होने के लिए। लास्ट प्रश्न लेते, बाकी प्रश्न कल ले लेंगे, समय पूरा हो रहा है। 15
The last question is, critics says Brahma Kumaris target vulnerable individuals such as those going through crisis, making them dependent on the organization. What's your stance on this?
आरोप ये है कि ब्रह्मा कुमारी जीवन में संघर्ष कर रहे या भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों को आकर्षित करती हैं और उन्हें अपने ऊपर निर्भर बना लेती हैं, क्या ये सच है?
ये सरासर झूठ है, क्योंकि यहाँ लोग हीलिंग की तलाश में आते हैं, कमज़ोर आत्माएं आती है, कमज़ोर लोग आते हैं, उनका कोर्स किया जाता है, उनमें आत्म जागृति लाई जाती है, ना कि उनको संस्था पर निर्भर किया जाए। उन्हें अपने आप, वो हर एक वॉलेंटियर खुद ही वॉलेंटियर करता है, और यहाँ पर किसी के साथ भी, यहाँ पर कोई लीगल बॉन्ड किसी को साइन नहीं करना है कि आप ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा कोई लेटर नहीं है जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन लेटर साइन करते हो, ऐसा कोई भी लेटर यहाँ नहीं है किसी के लिए भी। हर व्यक्ति संपूर्ण स्वतंत्र है, कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, कोई लीगल कागज नहीं है। यहाँ तो हर एक का आत्मसम्मान से देखा जाता है और उसे सशक्त बनाने का लक्ष्य है। आशीष भाई, तो एक हाँ हाँ बोलो बोलो।
आशा है कि आज श्रोताओं को इन प्रश्नों का जवाब मिला, और भी कुछ इसके बारे में संशयात्मक अगर कुछ ऐसे उत्पन्न होते प्रश्न, तो आप यहाँ आकर खुले मंच पर
प्रश्नों
स्वागत
के
है।
खाली प्रश्न गिना दो, बाकी जो बचे हुए उत्तर कल दें, केवल हिंदी में इन प्रश्नों के उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर कल दिए जाएंगे।
ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करती और आलोचकों को आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी कहती हैं, क्या ये सही है?
नेक्स्ट 17वां प्रश्न,
आपके संगठन के नियम जैसे खान पान, पहनावा और दिनचर्या बहुत कठोर माने जाते हैं, ये क्यों जरूरी है? कहा जाता है कि कुछ उन्नत शिक्षाएं केवल लंबे समय से जुड़े सदस्यों को ही सिखाई जाती हैं, जो संगठन को गुप्त बना देती हैं, क्या ये सच है? नेक्स्ट, क्या ब्रह्मा कुमारियां अपने सदस्यों को पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन छोड़ने जैसे बड़े फैसले लेने के लिए प्रभावित करती हैं? नेक्स्ट, ब्रह्मा कुमारियां पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रचार करती हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? लास्ट, आलोचकों का कहना है कि ब्रह्मा कुमारियों की चैरिटी और समाज सेवा मुख्य रूप से प्रचार के लिए है, ना कि सच्चे परोपकार के लिए, क्या ये सच है?
तो ऐसे ये टोटल 21 प्रश्न हैं जो हम ग्रुप में भी भेजेंगे। आप अपने तरफ से, क्योंकि हमने केवल एक पहलू रखा है, इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं, एक एक प्रश्नों को कई तरीके से उत्तर किया जा सकता है, तो आप भी इन प्रश्नों का उत्तर देने का ग्रुप में प्रयास करें। 21 प्रश्न हैं, और ये प्रश्न अच्छे से पढ़ना, उस पर चिंतन करना, इसके उत्तर किसी कहीं पर जगह पर कहीं लिखे नहीं है, आपको अपने चिंतन से इसके उत्तर तक पहुँचना है, अपने अनुभव से। और आप जब उत्तर देंगे तो जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं उनके मन में इतनी सारी भ्रांतियां, इतने सारे डर है कि उनको बहुत फायदा होगा इससे, ठीक है? तो ये भी एक सेवा ही है। और इसमें जो एक प्रश्न है जो कहा कि ब्रह्मा कुमारी या बिल्कुल सुनना नहीं चाहती आलोचना को, ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे ही संस्था में, अगर उनका अपोज किया, उनको ये प्रश्न पूछे गए तो वो कहते नहीं 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 आपको अज्ञानी है, तो हम अपनी तरफ से पूरा फ्री है। तो अपने आप को हमको ब्रॉड माइंडेड रखना है, ये है खुदाई खिदमतकार, डिफिकल्ट सिचुएशन में खुदा का साथ, डिफिकल्ट प्रश्न जब पूछे जाए तब बाबा से कनेक्ट होके कैसे उसका उत्तर दे। तो इसके हम उत्तर आगे की सीरीज में देते रहेंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटी स्टार्ट।
ओम शांति। बहुत ही गंभीर रूप से हम अभी प्रश्न उत्तर सुन रहे थे, जो हमारी आलोचना है उनको सुन रहे थे, उनका उत्तर भी सुन रहे थे। और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हम अभी कुछ समान का अभ्यास करेंगे विथ एक्शन, और समान का जो हम अभ्यास करेंगे उसमें समान को हम धीरे धीरे बोलेंगे, और वो हमारे अंदर समाता जा रहा है ऐसा अनुभव करेंगे। और लास्ट में एक संकल्प लेंगे, मैं आत्मा खुदा के खिदमतगार है, मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार है, मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार है, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक है, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ। सब एक बार मोबाइल निकालेंगे। मैं अपनी सफलता द्वारा, मैं अपनी सफलता द्वारा संसार को रोशन करने वाला हूँ। लाइट जलाइए। मैं अपनी सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाला आत्मा हूँ। मैं अपनी सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाला आत्मा हूँ। मैं अपनी सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाला आत्मा हूँ। मैं आत्मा खुदा के साथ कंबाइंड रहने वाली हूँ। मैं आत्मा खुदा के साथ कंबाइंड रहने वाला हूँ। मैं आत्मा खुदा के साथ कंबाइंड रहने वाले आत्मा हूँ। मैं आत्मा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा याद द्वारा और सेवा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है। मुझ आत्मा के ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है। मुझ आत्मा के ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है।
ज्यादा
मैं आत्मा
इन्होंने किया ही नहीं, हमने कुछ और होगा ऐसा ही
अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं आत्मा विघ्नों के दरवाजा बंद करने वाले हूँ। मैं आत्मा विघ्नों के दरवाजा बंद करने वाले हूँ। मैं आत्मा विघ्नों के दरवाजा बंद करने वाले हूँ। मुझ आत्मा का साथी स्वयं भगवान है। मुझ आत्मा के साथी स्वयं भगवान है। मुझ आत्मा के साथी स्वयं भगवान है। ओम शांति। एक संकल्प है। जब भी संकल्प लेते हैं तो खड़ा होना पड़ता है, लेकिन यहाँ का रूल्स है कि हम बैठे बैठे करें, लेकिन सूक्ष्म में हम खड़ा हो सकते हैं और हाथ को आगे बढ़ाएंगे। हाथ तो सूक्ष्म उस स्थूल में बढ़ा सकते हैं। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। मैं खुदाई खिदमतगार शिववंशी। आगे जो ब्रह्मा कुमार है वो ब्रह्मा कुमार बोलेंगे, जो ब्रह्मा कुमार है वो ब्रह्मा कुमारी बोलेंगे और नाम अपना बोलेंगे। पहले एक बार सुना देते हैं फिर बोलिएगा। मैं खुदाई खिदमतगार शिववंशी ब्रह्मा कुमार संकल्प लेता हूँ कि अपने संकल्प बोल कर्म से खुदा के खिदमत में अपने 200 नाखूनों के जोड़ लगाकर सदा तत्पर रहेंगे। रहूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे खुदा की खिदमत में विघ्न रूप बने। तो शुरू करते हैं। ओम शांति। मैं खुदाई खिदमतगार शिववंशी ब्रह्मा कुमार आशीष संकल्प लेता हूँ कि अपने संकल्प बोल कर्म से खुदा की खिदमत में अपने बीसों नाखूनों का जोर लगाकर सदा तत्पर रहेंगे। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे खुदा की खिदमत में विघ्न रूप बने। ओम शांति।
शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि के रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी,
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी।
शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति। प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी,
ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी।
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम।
शिव शक्ति
सृष्टि के रचनाकार क्रांति वीर तुम, सखा वीर तुम, महावीर तुम, शक्ति वीर तुम,
महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति,
महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति।
शिव शक्ति